તારીખ 6/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 572 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 498
દશા એ તીન પ્રકાર કી દશા મોક્ષ માર્ગ મેં આને વાલે મોક્ષ કો પાને વાલે જીવ કો હોતી હૈ જો જીવ મોક્ષ કો પ્રાપ્ત કરેંગે उसको पहले मुमुक्षु दशा आती है, फिर वो आगे बढ़ कर के ज्ञान दशा में आता है और फिर तीव्र ज्ञान दशा होती है। मुमुक्षु दशा है वो ज्ञान दशा के कारणभूत है और ज्ञान दशा है वो तीव्र ज्ञान दशा के कारणभूत है। मुमुक्षु दशा में ऐसे तो गुणस्थान तो पहला है, फिर भी मिथ्यात्व उसमें गलता है, मिथ्यात्व की शक्ति टूटती है। शास्त्र भाषा में कहते हैं कि मिथ्यात्व का अनुभाग कम होता है, अनुभाग मंद होता है और फिर वो ज्ञान दशा को प्राप्त करता है। ज्ञान दशा चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के पंचम गुणस्थान तक चालू रहती है और छठे गुणस्थान में भी ज्ञान दशा है। सातवें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान वो तीव्र ज्ञान दशा के गुणस्थान है। तो यहाँ तीव्र ज्ञान दशा की बात चली है। जिनेन्द्र ने तीव्र ज्ञान दशा कही है, किसको? वहाँ क्या होता है कि वहाँ सर्व विभाव से उदासीन दशा हो जाती है, यानी सर्व विभाव का वहाँ अभाव हो जाता है। उदासीन का उदासीनता का मतलब यहाँ अभाव लेना है और आत्मा अत्यंत मैंने परिपूर्ण अपने शुद्ध पर्याय को सेवन करता है या परिणमन करता है, उसे श्री जिनेन्द्र ने तीव्र ज्ञान दशा कही है। जिस दशा के आए बिना, ऐसी दशा आए बिना कोई भी जीव जीवन बंधन मुक्त नहीं होता। बंधन से सर्वथा मुक्त होकर के मोक्ष दशा को प्राप्त करें, ऐसी तीव्र ज्ञान दशा बिना नहीं होता। ऐसा सिद्धांत श्री जिनेन्द्र ने प्रतिपादन किया है जो अखंड सत्य है। ऐसा सिद्धांत जिनेन्द्र देव ने स्थापित किया है, प्रतिपादन किया है, वो बिल्कुल सही लगता है, उसमें कोई शंका का स्थान रहता नहीं है। क्योंकि जहाँ तक अशुद्ध दशा रहती है वहाँ तक बंध है, बंधन से मुक्ति नहीं है। किसी ही जीव से इस गहन दशा का विचार हो सकना योग्य है। इस दशा की समझ आना यथार्थ वो भी किसी जीव से होता है, मैंने सब साधारण जीव, संसार के सभी जीव ऐसी गहन दशा का विचार कर सकते नहीं है या समझ सकते नहीं है। ये परिणमन बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसको समझने के लिए भी निर्मलता चाहिए। जिसकी मति निर्मल हुई हो वही उसको समझ सकते हैं। किसी जीव से इस गहन दशा का विचार हो सकना योग्य है, क्योंकि क्यों नहीं होता है, इस दशा का विचार क्यों नहीं होता है? क्योंकि अनादि से अत्यंत अज्ञान दशा से इस जीव ने जो प्रवृत्ति की है उस प्रवृत्ति को एकदम असत्य असार समझकर उसकी निवृत्ति सूझे, ऐसा होना बहुत कठिन है। एक तो अनादि काल से अत्यंत अज्ञान दशा से जीव ने प्रवृत्ति की है और अज्ञान दशा के कारण बहुत मलिनता अपनी दशा में छाई हुई है, इसलिए भी मलिनता के कारण से भी इस दशा का विचार नहीं हो सकता। अत्यंत अज्ञान दशा से इस जीव ने प्रवृत्ति की है और प्रवृत्ति की है, प्रवृत्ति विचार होना और प्रवृत्ति होना में क्या फर्क है? कि जो विचार है उसमें थोड़ी मंदता होती है, लेकिन तीव्रता कषाय की होती है तो प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा बनता है। ऐसी प्रवृत्ति को एकदम असत्य माने ऐसा जल्दी बन सकता नहीं है। जैसे कि शरीर के साथ तीव्र एकत्व बुद्धि अनादि से है, तो शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर रूप नहीं हूँ, ऐसा जल्दी मानने में नहीं आता है। और शरीर का कार्य मैं आत्मा नहीं करता, वो भी जल्दी मानने में नहीं आता। अभी तो गुरुदेव की कृपा से हम लोग समझने लगे हैं, लेकिन परिणमन करने में ये बात अभी तक आई नहीं है। परिणमन हो गए तो वही सत्य समझ है, परिणमन नहीं हुए तो समझ किस काम की फिर भी? समझ इधर और परिणमन उधर, उल्टा ये हो जाता है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति एकदम असत्य लगे, असार लगे, दुखदायक लगे और उसकी निवृत्ति सूझे, ऐसा होना बहुत कठिन है। उसका नाश करने का उपाय सूझे, ऐसा होना बहुत कठिन है। इसलिए जिनेन्द्र ने ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग का निरूपण किया है। तो ऐसी मलिनता का अभाव हुए, इसलिए जिनेन्द्र ने निरूपण किया, इसका मतलब जिनेन्द्र देव की आज्ञा है कि ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति वही एक इलाज है, मार्ग मैंने वही इलाज है। अब देखिए कि जिनेन्द्र ने ये निर्मलता के लिए उपवास करने को नहीं बोला है कि तुम 5-25 उपवास कर लेना, तुम्हारी मति निर्मल हो जाएगी, ऐसा नहीं किया। ऐसा भी नहीं किया कि हमारी पूजा हमेशा अष्टद्रव्य से कर लेना, और ऐसा भी नहीं किया कहा कि फलाना फलाना शास्त्र पढ़ लेना, या ऐसा भी नहीं किया कि हमारे नाम का जाप कर लेना, माला फेर फिरना, तुम्हारी मति निर्मल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा भी नहीं कहा कि तुम इतना दान दोगे तो तुम्हारी मति निर्मल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं कहा। अनेक प्रकार के धर्म साधन है, उसमें से ज्ञानी पुरुष के का आश्रय करने रूप भक्ति वही मार्ग है। सबसे पहले मुमुक्षु जीव के लिए सबसे पहले, दूसरा भी मुमुक्षु करता है, शास्त्र भी पढ़ता है, दयादान भी करता है, जप तप भी करता है, पूजा भक्ति भी करता है, लेकिन सबसे प्रधान यानी मुख्य करने योग्य कार्य है तो ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति है, आश्रय भक्ति में जाना। कि हमको यही एक शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है, ऐसा आ जाए। कि जिस मार्ग के आराधन से ऐसा ज्ञानी पुरुष के आश्रय रूप, आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग के आराधन से, आराधन मैंने ऐसा परिणमन होने से सुलभता से ज्ञान दशा प्राप्त होती है। ज्ञान दशा की प्राप्ति ग्रंथ पढ़ना नहीं लिया, देखो ज्ञान दशा और ग्रंथ पढ़ना वो भी ज्ञान का अभ्यास हुआ, शास्त्र पढ़ना उसको ज्ञानाभ्यास बोलने में आता है। क्या बोलने में आता है? वो ज्ञानाभ्यास है। तो ज्ञानाभ्यास करने से ज्ञान दशा की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं कहा। ज्ञानी पुरुष के आश्रय करने रूप जो भक्ति है, इससे सुलभता से, आसानी से, सुलभता का मतलब आसानी से ज्ञान दशा की प्राप्ति होती है। क्या रहस्य है इसमें? कोई ज्ञानी होते हैं और इसके जो शरण में जाते हैं और भक्ति करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ये व्यक्ति पूजा हो गई? हाँ, हमारे जैन मार्गदर्शन में तो व्यक्ति पूजा है ही नहीं। व्यक्ति पूजा है या गुण पूजा है? गुण पूजा है। गुणवान की भक्ति करना वो गुण पूजा है, और गुणवान नहीं है उसकी भक्ति करना वो व्यक्ति पूजा है। ऐसा फर्क है। तो इसलिए यही एक ज्ञान दशा प्राप्त करने का उत्तम और सरल उपाय है। उत्तम उपाय इसलिए है कि दूसरे सब उपाय से इसका इसकी श्रेष्ठता है, एक बात। और सरल इसलिए है कि दर्शन वो आसानी से मंद हो जाता है। जिस ज्ञानी ने दर्शन का अभाव किया, उसका बहुमान होना, आश्रय करने रूप भक्ति में क्या होता है, उसका बहुमान होने से बहुमान करने वाले का दर्शन वो मंद हो जाता है सहज रूप से। इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञान दशा के लायक हो जाता है। दर्शन वो जिसका यथार्थ प्रकार से मंद हुआ, उसको दर्शन वो का अभाव होना, उपशम होना सहज हो जाएगा। पहले मंद होता है, फिर अभाव होता है। मंद होने से आत्मस्वरूप का भाव वासन होता है, और अभाव होने से आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बस दो स्टेज आता है और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। हाँ, भक्त भक्ति में ओघ संज्ञा रहती है। और आश्रय करने में एक विशेषता वो है कि वो ज्ञानी का अवलंबन लेता है, आश्रय करने में आधार लेता है, अवलंबन लेता है। तो बहुत से प्रकार के अवगुण उत्पन्न नहीं होते और अनेक प्रकार के सद्गुण उत्पन्न होने चालू हो जाते हैं। ये फायदा है। और सबसे बड़ी बात वो है कि दर्शन भोग का अनुभाग यथार्थ रूप से टूट जाता है और वो उपशम होने योग्य, अभाव होने योग्य हो जाता है, ऐसा बनता है। ये एक सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, जो भक्ति करते हैं, वैसे तो बहुत से लोग भक्ति करते हैं और आश्रय करते हैं, तो एक ऐसी परिस्थिति आती है कि जिससे तो उनका सानिध्य के बिना उस पर रहना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे हम देख लो, हमारे पास घर नहीं, मकान नहीं हो, पर पैसे भी नहीं हो, तो हमारी हालत क्या हो जाती है कि हम दीन वृत्ति वाले हो जाते। क्या करें, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास मकान भी हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे? क्योंकि जाड़े के दिन में ठंड पड़ती है और ग्रीष्म में, गर्मी के दिन में बहुत गर्मी होती है और बरसात के दिन में काफ़ी पानी गिरता है। आश्रय तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे हमारे पास जो पैसे और मकान है, तो हमारी आश्रय बुद्धि का हमको पता नहीं है। हमारी कितनी आश्रय बुद्धि वहां है, इसका पता हमें नहीं होता है। लेकिन आश्रय बुद्धि का थोड़ा अवलोकन करे तो पता चलता है। पता कब चलता है? आश्रय बुद्धि क्या है, ऐसे हमारे परिणाम का अवलोकन करे तो पता चल जाता है। तो आश्रय होने से निर्भय हो जाते हैं। आश्रय मिलने से क्या हुआ, हमारे परिणाम में क्या हुआ कि हम निर्भय हो गए हैं, तो रहने के लिए मकान है और रोटी खाने के लिए पैसे वगैरह भी हैं, तो हम निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए इस विषय में। रात को कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, उसकी चिंता हमें नहीं है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के आश्रय में जाने वाले निर्भय हो जाते हैं। किस प्रकार से निर्भय हो जाते हैं कि अब मेरे कोई जन्म मरण रूप संसार नहीं है, ये बात आ जाती है कि अब मुझे मेरा जन्म मरण नहीं होगा, अब मैं परिभ्रमण करने वाला नहीं हूं, अब संसार में भटकूंगा नहीं मैं। मुझे एक बहुत ऐसे पुरुष का आश्रय मिल गया है कि मैं तिर जाऊंगा, बस अब मैं तिर जाऊंगा, ये बात निश्चित है। ऐसी एक परिस्थिति आश्रय होने से होती है, तो ये सिम्टम है आश्रय का, निर्भय होता है। और तो आश्रय ऐसे निर्भय कब होता है कि उसको पूरी आज्ञाकारिता आ जाती है, तब आज्ञाकारिता नहीं आएगी तो आश्रय भाव भी है ही नहीं, और आश्रय भाव नहीं है तो ऐसी निशंकता भी आएगी नहीं। तो इस तरह से जो आश्रय भक्ति है उसमें आज्ञांकितपना आज्ञाकारिता परिपूर्ण होती है, संपूर्ण होती है, तो वो जीव ज्ञान दशा को प्राप्त करने लायक हो जाता है, और उसको उसकी आत्मा भी गवाह देती है, उसको साक्षी होती है, खातरी होती है कि अब मैं भटकने वाला नहीं, मैं तिर जाऊंगा। देखो वो भी कहेंगे, ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित किए बिना यह भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता। लियो, आपका प्रश्न का ही उत्तर दिया है है ना? हमने थोड़ा विस्तार कर लिया, लेकिन एग्जैक्ट वही बात है, वो शैली है उनकी। जो बात वो स्थापित करते हैं तो स्थापना किया तो वहां प्रश्न उठेगा कि फिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे भक्ति मार्ग लिया, आश्रय करना रूप भक्ति मार्ग लिया, वो कैसे होता है, तो कोई उसके चरण में मन को स्थापित करना है। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित किए बिना ऐसा भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता। सिद्ध मैंने प्राप्त नहीं होता, सिद्ध होना मैंने प्राप्त होना। जिससे यानी इसी कारण से जिनागम में पुनः पुनः ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने का स्थान स्थान पर कथन किया है। तो चरण में मन को स्थापित करना, इसका मतलब ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करना। आज्ञाकारिता का मतलब क्या है? कि ज्ञानी कहे और हाँ भरे, वो नहीं, आराधन करे, ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करे, वो जो कहे उसको अमलीकरण में ले जाए, अंगीकार कर ले, तभी आज्ञा का सत्कार किया। आराधन करने की बात नहीं, परिणमन होने की बात लिया है, वो सिर्फ बुद्धि से सम्मत किया उतनी बात नहीं लिया, आराधन करने की बात लिया। और बहुत बड़ा फायदा है इससे, बहुत बड़ा फायदा तो अपने को है। ऐसा विवेक आना चाहिए, उपादान में ऐसा विवेक आना चाहिए कि मेरा फायदा इधर है बस। फिर जीव को फायदा मालूम पड़े तो अनुसरण के बिना, आराधन के बिना रहेगा नहीं। और ज्ञानी है वो ठीक उसको क्या करने लायक है वो बता देता है कि तुम अभी तो ये काम करो, तुम्हारा अभी होमवर्क इतना ही है, फिर आगे की बात करनी है, पहले तो यहाँ कदम रखो, पहला कदम इधर रखो, फिर दूसरा कदम उधर रखने का है, और वो आराधन करता है तो अपने को फायदा हो जाता है। इसलिए आज्ञा का आराधन में एकांत अपना निज हित है, और कोई बात इसमें है ही नहीं। निज हित के सिवा और कोई बात इसमें है ही नहीं। इसलिए जिनागम में भी देखो पुनः पुनः बार बार फरी फरी ने ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने का स्थान स्थान पर ठाम ठाम कहवामा ज्ञानी पुरुष के चरण में मन का स्थापित होना पहले तो कठिन पड़ता है। क्यों कठिन पड़ता है? कि अपनी प्रकृति विरुद्ध ये बात है। जीव की जो प्रकृति है वो तो प्रकृति से जीव स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति करता है, अपनी मनमानी करता है। संसार के कार्यों में तो मनमानी करता ही है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी मनमानी करता है। वो अंबादास भाई कहते थे कि ऐसी आज्ञा का आराधन होना कि श्वासोश्वास के बिना दूसरी बात बिना आज्ञा को हमें करनी चाहिए है, क्योंकि श्वासोश्वास ऑटोमेटिक है। इतना अभिप्राय हो गया जिसका, उसकी प्रकृति टूट जाएगी। वरना प्रकृति के साथ लड़ाई होती है। क्या होती है? लड़ाई होती है, अंदर में फ्रिक्शन होता है। प्रकृति जीव को और जगह खींचती है और ये विवेक रूप ज्ञान उसको और जगह खींचता है, तो थोड़ा कठिन पड़ता है। क्योंकि ऐसे उस प्रकार से परिणमन करने का कभी आगे हुआ नहीं है, नई बात है। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन का स्थापित होना पहले तो कठिन पड़ता है, पहले बहुत कठिन लगता है। वो जो परिणमन में जीव राचता था बहुत आनंदित होता था, हंसते हंसते कठिन कर्म को बांधता था, उसको क्या होता था? हंसते हंसते बहुत बड़े कठिन कर्म को बंधन करता था। अब रोते रोते छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने में तो इतना पसीना आ जाएगा, रोना आ जाएगा जब ही छूटेगा। तो पहले तो कठिन पड़ेगा, पहले तो कठिन पड़ता ही है। परंतु वचन की अपूर्वता से, उस वचन का विचार करने से तथा ज्ञानी को अपूर्व दृष्टि से देखने से मन का स्थापित होना भी सुलभ होता है। अभी कठिन को सुलभ कैसे करना, वो उत्तर दे दिया। क्या आपने ये बात कहा कि कठिन लगता है, कठिन पड़ता है, तो बात तो लगती है कि कठिन पड़ता भी है। अब इसको सुलभ कैसे करें, उसका भी उत्तर दे दिया। देखो बहुत सुंदर शैली है, खुद प्रश्न नहीं उठाते हैं लेकिन बराबर अध्ययन करने वाले को तो प्रश्न उठेगा ही कि जब ये बात कठिन है तो उसको आसान कैसे करे। तो बहुमान आने से, ज्ञानी के प्रति बहुमान आने से ये सुलभ होता है। तो बहुमान कैसे आता है? कि वचन की अपूर्वता से। पहले तो जो वचन सुनने को मिलता है उसमें लगता है कि मेरा आत्महित अपूर्व प्रकार, अपूर्व आत्महित होने का है। क्या उसको फील होता है, लगता है? ऐसा कभी आत्महित हुआ नहीं, ऐसा मेरा अपूर्व आत्महित होने का अवसर अब दिखता है मुझे, मैं सही ठिकाने आ गया और मेरा अपूर्व आत्महित हो जाएगा। तो वचन की अपूर्वता लगती है, एक एक वचन में उसको आत्महित कैसे हो, वो रास्ता मिलता है, वहां से मार्ग सूझता है। तो वचन की अपूर्वता भी भाषित होती है, और उस वचन का विचार करने से, विशेष विचार करने से उसकी गहराई मालूम पड़ती है, तो और बहुमान आता है। तथा ज्ञानी को अपूर्व दृष्टि से देखने से फिर इसके प्रति की दृष्टि बदल जाती है। वो तो मनुष्य रूप में दिखाई देता नहीं है, दिखता है कि वास्तव में कोई मेरा संसार का नाश करने के लिए कोई जन्म लेकर के आया है, कोई मेरे लिए जन्म लिया है, ऐसा लगता है। ज्ञानी तो अपने रास्ते चले जाते हैं, आत्महित करते करते अपने रास्ते पे वो चले जाते हैं, लेकिन साथ साथ वो रास्ता भी दिखाते जाते हैं पीछे आने वाले को, देखो हम ऐसे रास्ते चल रहे हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं, यही रास्ते से चल रहे हैं। तो देखने वाले की दृष्टि भी बदल जाती है, उनको लगता है कि अब जो है मेरे लिए कोई, इसका कोई अस्तित्व है वो मेरे लिए, ऐसा लगता है। एक स्वाभाविक होता है, गुरुदेव संस्कार लेके आए थे, एक घटना है, बहुत अच्छी घटना है, इसी टाइप की है। तो आए थे तो संस्कार लेकर के आए थे महाविद्य क्षेत्र से, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते अध्यात्म तत्व की रुचि बढ़ गई, संस्कार पड़ गया, लेकिन छोटी उम्र में वहाँ देहांत हो गया और इधर आ गया। समय सा रात में आया तो उनको ऐसा भाव आया कि कुंद कुंद आचार्य ने समय सार मेरे लिए लिखा था क्या, 2000 साल के बाद ये भाव आया कि 2000 साल पहले उन्होंने जो ग्रंथ बनाया वो मेरे लिए बनाया था, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जैसा कोई आत्मा को हित होने का था तो ये ग्रंथ रचना हो गई है, मेरे लिए ही हुई है। तो जैसे ग्रंथ के विषय में ऐसा भाव आया, तो सजीवन मूर्ति के विषय में तो ऐसा भाव आए बिना रहेगा नहीं। तो अपूर्व दृष्टि से देखेगा वो, कैसे देखेगा, अपूर्व दृष्टि से देखने से फिर मन का स्थापित हो जाएगा, इसके चरण में मन लग जाएगा, फिर उसकी आज्ञा का आराधन किए बिना रहेगा नहीं। ऐसे ज्ञानी पुरुष के आश्रय करने में विरोध करने वाले पंच विषयादि दोष है, जिस जीव को पंचेंद्रिय में के विषय में तीव्र आसक्ति है, वो तो ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने वाले परिणाम उससे हो सकता नहीं है। ये बहुत अनुभवपूर्ण बात लिखा है कि यहाँ का जो खिंचाव है, पंच विषयादि जो दोष के परिणाम में जो खिंचाव है, इस कारण से वो ज्ञानी पुरुष का बहुमान कर सकता नहीं है, उसका आश्रय करने का परिणाम नहीं आता है, मन स्थापित नहीं होता है, उसका मन उधर लगता है, कहाँ, पंचेंद्रिय दोष में लगता है, तो उसका मन है ज्ञानी पुरुष के चरण में लगता नहीं है। इन दोषों के होने के साधनों से यथाशक्ति दूर रहना, ऐसे ये पंचेंद्रिय विषय के दोष जो होते हैं उसके साधन के पीछे दौड़ मत लगाना, इसे दूर होना अच्छा है, दूर रहना अच्छा है। और प्राप्त हुए तो, और प्राप्त साधन में पहले से ही प्राप्त हो, बाद में ये सूझ आई, और पूर्व पुण्य के योग से पांच इंद्रिय के विषय तो पहले से ही प्राप्त है, क्योंकि उसमें उदासीनता रखना, निरस हो जाना, इस परिणामों में रस लेना से ज्ञानी पुरुष का आश्रय रूप भक्ति मार्ग आएगा, इसका विरोध करने वाला है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। कहते हैं क्या है, पंचेंद्रिय विषय में आसक्ति के जो परिणाम और ज्ञानी पुरुष के प्रति तीव्र भक्ति के परिणाम, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी परिणाम है, आपस में विरोध करने वाले हैं एक दूसरे का। तीव्र भक्ति आई उसके वो परिणाम ठंडे हो जाएंगे पंचेंद्रिय के, क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि विरुद्ध परिणाम परिणाम चालू है, इसलिए होता नहीं है, वो सीधी साधी बात है। जब एक होमवर्क दिया और होमवर्क करने लायक ऐसा बुद्धि में आया लेकिन होता नहीं है, इसका क्या कारण, तो विरुद्ध परिणाम चालू है। वो विरुद्ध परिणाम क्या है कि पंचेंद्रिय के पंचविषय आदि दोष है, पंचविषय के परिणाम जो दोष के होते हैं वही है, उसमें तीव्र आसक्ति है। इसलिए ऐसे साधन से दूर रहना, प्राप्त नहीं हो तो दूरज दूर ही रहना, और प्राप्त हो तो उदासीनता रखना, अथवा उन उन साधनों में से अहम बुद्धि को दूर कर उन्हें रोग रूप समझकर प्रवृत्ति करना योग्य है। फिर भी प्रवृत्ति तो होगी, प्राप्त साधन में प्रवृत्ति होगी, लेकिन निरस प्रवृत्ति होनी चाहिए। निरस कैसे हो, कि अपनापन एक तो छोड़ देना है, दूसरा कि फिर भी उसको रोग समझ लेना है। रोग परवश होता है, रोग स्ववश होता नहीं है, तो उसको रोग समझ लेना। रोग में किसको रस आएगा, नहीं आएगा।
मान लीजिए कि पंखा है और गर्मी के दिन है तो क्या उपयोग नहीं करना चाहिए, उस तरीके से उदासीनता आएगी।
एक तो पहले तो अपनत्व छोड़ना है, पहले बात क्या रखा, क्रम से बात लिया है, उन उन साधनों में से अहम बुद्धि को दूर करना, ये पहला क्रम लिया है। अपनापन छोड़ना, ये चीज मेरी है, पंखा तो पंखा है, अपने घर में भी है और इधर स्वाध्याय हॉल में भी है, घर वाला पंखा और ये पंखा एक नजर से नहीं देखा जाता। जो हम परचेस करके लाए और उधर लगवा दिया है, और हम और जगह बैठते हैं, वहां भी पंखा है, इधर भी पंखा है, बिना विकल्प ये मेरा नहीं है और बिना विकल्प ये मेरा है, ऐसा आता है कि नहीं आता है परिणाम में? हाँ, विकल्प नहीं करना पड़ता, जानते ही ये मेरा है और जानते ही ये मेरा नहीं है। बाहर गांव जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, वहां भी पंखा होते हैं, और जगह जाते हैं, घर का और पर का, ये होता है कि नहीं होता है? तो पहले तो अहम बुद्धि दूर करने से रस टूटेगा, अहम बुद्धि दूर करने से रस टूटेगा, पहले तो रस यहां से टूटेगा। दूसरा, रोग रूप समझकर प्रवृत्ति करना है, मेरे से रहा जाता नहीं है ऐसा एक राग रूप रोग अनादि से मेरे में चल रहा है, ये रोग है। जैसे किसी को ये क्षुधा का रोग है कि नहीं है, देखो ना पूजा में क्या आता है, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामि, ये क्षुधा का रोग है। तो क्षुधा होती है और हम खाना खाते हैं, लेकिन ये रोग के सामने खाना खाया जाता है ऐसा लेते हैं, या ये रसना इंद्रिय के विषय को लेकर के खाना खाते हैं, क्या कैसे खाता है खाते हैं हाँ? ये खाने खाना खाना ये रोग है, हमारे शास्त्र में तो उसको रोग बताया है, मेडिकल साइंस में तो भूख नहीं लगे तो रोग हुआ ऐसा कहेंगे, भूख लगने वाले को तो तंदुरुस्ती बोलेंगे हाँ, अच्छी भूख लगती है जब तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी है, भूख मर गई है तो नक्की कोई गड़बड़ है, लीवर बिगड़ा हुआ है, क्या बात हुई है हाँ, अल्सर हुआ है, क्या बात है? तो एक क्षुधा का रोग समझ करके उसको खाना देवे, जैसे दवाई देते हैं, तो बुखार आया दवाई ले लो, तो दवाई कोई खुराक है क्या हाँ? तो कोई खुराक नहीं है, वैसे ये भी एक दवाई है और क्या है, दवाई के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन हमको दवाई को भी श्रृंगार करते हैं है? उसको बादाम लगाओ, केसर लगाओ, पिस्ता लगाओ हाँ, दवाई का श्रृंगार, कितनी हास्यास्पद बात है वो हाँ? दवाई को भी अच्छी बनाना, आजकल वो है ना, दवाई मीठी चाहिए कड़वी नहीं चाहिए, ये बात हो गई है रोग रूप जानकर प्रवृत्ति करना, फिर रस आएगा नहीं, अपनत्व दूर होने से भी रस नहीं आएगा और रोग रूप जानने से भी रस नहीं आएगा। अनादि दोष का ऐसे प्रसंग में विशेष उदय होता है। ऐसे प्रसंग में मैंने कैसे कि जब जीव अपने दोष निकालने के लिए तैयार होता है तो और उदय सामने आता है। जैसे कृपालु देव को ये हुआ था, व्यवसाय से 24-25 साल की उम्र से ज्ञान हुआ और बहुत विरक्ति आ गई, ये प्रवृत्ति हमको नहीं चाहिए। लेकिन 25-26 साल में उतनी प्रवृत्ति बढ़ गई, उतनी प्रवृत्ति बढ़ गई कि निवृत्ति नहीं ले सके 1.5-2 साल तक। तो ऐसे प्रसंग में जो अनादि दोष है उसका विशेष उदय होता है, तीव्र उदय आता है। तीव्र उदय आने का एक गणित है इसके पीछे, करणानुयोग का गणित है, वो इस प्रकार का है कि जो सत्ता में संचित कर्म होते हैं वो संचित कर्म की स्थिति है वो संक्षेप होती है, अपकर्षण जिसको शास्त्र भाषा में कहते हैं, यानी स्थिति उसकी अल्प हो जाती है। तो और अनुभाग तीव्र होता है। करणानुयोग की गणित के हिसाब से स्थिति अल्प होती है और अनुभाग तीव्र, तो तीव्र रूप से उदय आएगा और जल्दी उदय में आ जाएगा। जो पीछे से उदय में आने वाले था वो पहले उदय में आएगा, क्यों? तो जाने के लिए तैयार हो गया, तो जल्दी जल्दी सलाम करने के लिए सामने आता है कि अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, ऐसा होता है। ऐसे प्रसंग में अनादि दोष का विशेष उदय होता है, तीव्र रूप से उदय आता है, क्योंकि आत्मा उस दोष को नष्ट करने के लिए अपने सन्मुख लाता है। सन्मुख लाता है मतलब क्या है, उसकी स्थिति अपकर्षण कर देता है, उसको नष्ट करने के लिए उसकी स्थिति है वो संक्षेप कर लेता है। यहाँ पुरुषार्थ चलता है तो स्थिति कम हो जाती है। सन्मुख लाता है कि वह रूपांतर करके उसे आकर्षित करता है, तीव्र रूप से उदय आकर के नए रूप में उसको लुभाने का एक और प्रयास भी होता है। जैसे दिया बुझने से पहले उसकी जो लौ है वो तीव्र प्रकाशित होती है, फिर शांत हो जाता है, वैसे वो नष्ट होने के पहले तीव्र रूप से रूपांतर करके आकर्षित करने के लिए सामने आ जाता है। और जागृति में शिथिल करके अपने में एकाग्र बुद्धि करा देता है। अगर जीव की जागृति नहीं रही तो उसमें एकाग्रता बुद्धि की हो जाएगी, तन्मय हो जाएगा और परिणाम नीचे गिर जाएगा। अगर जागृति नहीं रही तो, जागृति रही तो वो बेचारे का कोई बलजोरी होती नहीं है, उदय की कोई बलजोरी नहीं होती, खुद की जागृति हो तो अलग बात है। तो किस प्रकार की वो एकाग्र बुद्धि करा देता है, कहाँ वो धोखा खा जाता है कि मुझे इस प्रवृत्ति से वैसे विशेष बाधा नहीं होगी। ठीक है, उदय आया है, उदय आया है, क्या करे, उदय आ गया तो अपने को तो खास बाधा नहीं आएगी, अपन जानते हैं ना। वो मन से समाधान कर लेता है क्या कि मुझे विशेष बाधा नहीं होगी और अनुक्रम से मैंने धीरे धीरे मैं उसको भी छोड़ने वाला हूँ, और फिर भी प्रवृत्ति करते वक्त मैं और जागृति में रहूँगा, ऐसा वो मन से समाधान कर लेता है विकल्प से। इत्यादि भ्रांत दशा उन दोषों से होती है, जो भी एक भ्रांति है ऐसा हो जाता है, जिससे जीव उन दोषों का संबंध नहीं छोड़ता, मतलब इस दोषों का संबंध चालू रहता है, परंपरा चालू रह जाती है। अथवा वे दोष बढ़ते हैं, संबंध तो नहीं छूटता लेकिन दोष बढ़ते हैं और अपने को पता नहीं चलता है कि हमारा दोष बढ़ गया, वो भी पता नहीं चलता है। और दोष बढ़ते हैं और बढ़ते हुए दोष का ध्यान भी उसे नहीं आ सकता, ख्याल में नहीं आता है वो बात। उस तरह से परिणमन में गड़बड़ नहीं हो, धोखा नहीं हो, वो बचाने के लिए इतना स्पष्टीकरण कृपालु देव ने दिया है कि देखो तेरा ख्याल रखना, अहम बुद्धि छोड़ना और रोग रूप जान करके प्रवृत्ति करना है। दूसरे प्रकार से समाधान नहीं करना। और इस विरोधी साधन का दो प्रकार से त्याग हो सकता है, एक तो उस साधन के प्रसंग की निवृत्ति द्वारा, मैंने उस प्रसंग से हट जाना है, इस साधन के प्रसंग से हट जाना, खुद ही हटने का परिणाम कर लेना है, हमको नहीं जाना है, फिर जाना हो अलग बात है, लेकिन जाने का हमारी तैयारी नहीं है। दूसरा, विचार पूर्वक उसकी तुच्छता समझना, फिर भी हमको प्रसंग में आना पड़े तो उसका उसकी कोई रस नहीं आवे, तुच्छता लगे, क्या रखा है इसमें, ये खाने पीने की चीज में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। 6 घंटे के बाद तो विष्ठा हो जाती है, क्या रखा है इसमें, उसकी पूर्व उत्तर पर्याय देखो तो तुच्छता आ जाएगी इस पर। जैसे खाद होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, उसमें से वो बना परमाणु पर्याय अंतर करके अनाज वगैरह बना, दूध वगैरह बना, मावा खेवा बनता है, क्या बनता है, इसमें से तो बनता है, पर फिर वही स्थिति उसकी हो जाती है, वही खाद हो जाता है, ये चक्कर है पूरा, सर्किट पूरा होता है, खुराक में से खाद और खाद में से खुराक, यही होता है। तो उसकी तुच्छता लग गई, बात खत्म। तुच्छता आने से कोई रस आने वाला नहीं है। विचार पूर्वक तुच्छता समझने के लिए उस पंच विषयादि के साधन की निवृत्ति करना अधिक योग्य है, क्योंकि उससे विचार का अवकाश प्राप्त होता है। प्रवृत्ति के काल में विचार कम रहता है, लेकिन निवृत्ति के काल में विशेष विचार कर सकते हैं, इसलिए निवृत्ति रखना अच्छा है। उस पंच विषयादि के साधन की सर्वथा निवृत्ति करने के लिए जीव का वो बल न चलता हो, तब क्रम क्रम से अंश अंश से उसका त्याग करना योग्य है, एक साथ एक झटके से छोड़ नहीं सकते हैं, तो अंश रूप त्याग करके भी उसको छोड़ सकते हैं। उसमें क्या करना कि परिग्रह तथा भोग उपभोग के पदार्थों का अल्प परिचय करना, अल्प परिचय करना है, क्या संयोग तो संयोग है, अपना परिचय अल्प होना चाहिए। परिचय का मतलब क्या था, अनुभव में लेना कम, जैसे एक चीज खाई कैसी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, वो इसका पुद्गल का स्वाद का परिचय है, तो जितना परिचय करता है उतना उसमें ज्ञान सूक्ष्म होता है, ये तो बहुत अच्छी है, इतनी खूबियां हैं उसमें, लेकिन ध्यान नहीं देवे तो क्या खाया क्या नहीं खाया हमको पता ही नहीं, तो उसका परिचय नहीं होगा। तो इसका भोग उपभोग का अल्प परिचय करना, मैंने उपयोग कम देना या मत देना, ये विकल्प आया था मुझे कि प्रश्न क्यों नहीं उठता है, आगे वो बात किया इधर वो बात किया, उधर दूसरी बात है उधर दूसरी बात है। वहां तो जो जीव क्रम से उसको छोड़ने का समाधान करता है वहां उसको रस आता है, रस आता है, और यहाँ निरसता आती है और क्रम से छोड़ता है, क्या है, दोनों प्रकार के परिणाम में बहुत फर्क है। ऊपर जो बात लिया है बराबर, प्रश्न आया है, आना चाहिए वरना ऊपर से जाएगा सब, आगे पीछे क्या लिखा है, तो क्या है कि जो जीव फंसता है, जिसका दोष बढ़ता है या दोष लंबाता है, तो उसको रस आता है, फिर भी झूठा समाधान करता है वो, ठीक है अभी तो खा लो ना, अभी आइंदा कम खाएंगे, आगे जा करके त्याग कर देंगे, अब खा लो, इस वक्त तो कोई बाधा नहीं आएगी, जरा अपन जागृत ही रखेंगे, ऐसा झूठा समाधान करता है। और जिसको निवृत्ति करनी है, मैंने इस दोष की निवृत्ति नाश करना है, और इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है, मतलब पुरुषार्थ करता तो है लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है, तो क्या है कि शक्ति बाहर जाकर के कोई कदम उठाएगा तो परिणाम बिगड़ेगा। जरा देख समझ करके, अपनी शक्ति को समझ करके, जितनी भी शक्ति है उतना वो निरस होकर के प्रसंग को भी उतना कम कर देता है, तो प्रसंग भी कम होगा और रस साथ साथ कम हुआ, रस रह गया और प्रसंग कम किया तो फिर वो बात दमन की हो जाएगी, तो इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये पता ना स्वयं के अवलोकन से पता चलता है, वो अपने अवलोकन से पता चलता है कि मेरा रस है, मेरा अभिप्राय क्या है, चीज अच्छी है, अच्छी लगती है तो अभिप्राय पूर्वक लगती है, या अभिप्राय मेरा बदल गया है और चीज सामने आई है तो हमको निषेध आता है, क्या बात है। अभिप्राय का अवलोकन करने से पता चल जाएगा परिणाम की गहराई, इस परिणाम के पीछे क्या अभिप्राय रहा है उससे नापी जाती है। फिर से, जो भी दूषित परिणाम आते हैं जीव को, उस दूषित परिणाम की गहराई का नाप आना चाहिए। ऊपर ऊपर से तो ये ऐसा और वो भी ऐसा, दोनों में क्या फर्क है पता नहीं चलेगा, बात तो सिमिलर लगती है ना, एक सी लगती है, फिर एक सी है नहीं, कैसे एक सी है नहीं, कि इसके पीछे अभिप्राय क्या है उसका पता लग गया तो बात समझ में आ जाएगी। पहले वाले में अभिप्राय समेत प्रवृत्ति है, दूसरे वाले में अभिप्राय विरुद्ध प्रवृत्ति है, ये बात है। अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल है परिणमन में, अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अभिप्राय की होती है। तो दूषित परिणामों का नाप की गहराई उसका अभिप्राय के साथ समझी जाती है, ये सिद्धांत है इस विषय का। अब देखो, पढ़ने से मालूम नहीं पड़ेगा, सत्संग से ये सब बात मालूम पड़ती है, सीधा पढ़ने से नहीं मालूम पड़ता, सत्संग में ये मालूम पड़ती है, और अकेले अकेले विचार में उतने नहीं जा सकते। जब इसकी चर्चा होती है, इसकी छानबीन होती है, तो वो बात खुल करके आती है। तो उसका उपयोग चल जाता है तो बात निकलती है, वरना तो ऐसे ही चलते, कोई सोच समझ करके तो नहीं पढ़ते हैं कि ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, क्या मालूम पड़े। प्रश्न आता है तो प्रश्न है वो तो उत्तर को खींच के ले आता है, बाहर निकाल देता है इस विषय को, इसलिए प्रश्न होना जरूरी है। हमारे यहाँ ये तकलीफ होती है, प्रश्न मत करो, अरे भाई क्या बात करते हो, प्रश्न मत करो नहीं, प्रश्न ज्यादा से ज्यादा करो, लेकिन प्रयोजन बुद्ध, बिना प्रयोजन प्रश्न करना उचित नहीं है। ऐसा करने से अनुक्रम से यह दोष मंद पड़ता है, और दोष मंद पड़ता है तो आश्रय भक्ति दृढ़ होती है, तीव्र होती है, दृढ़ होती है माने तीव्र होती है, दोष तीव्र होता है तो आश्रय भक्ति तीव्र हो सकेगी नहीं। तथा ज्ञानी के वचन आत्मा में परिणमित होकर आगे जाकर के तीव्र ज्ञान दिशा प्रकट होकर जीवन मुक्त हो जाता है, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। जीव क्वचित ऐसी बात का विचार करे जिससे अनादि अभ्यास का बल घटना कठिन है, कभी कभी विचार करे और दूसरे असत प्रसंगों में अपना समय शक्ति चला जाए, परंतु दिन प्रतिदिन प्रसंग प्रसंग में और प्रवृत्ति प्रवृत्ति में पुनः पुनः विचार करे, वो जागृति का सवाल है, तो अनादि अभ्यास का बल घटकर अपूर्व अभ्यास की सिद्धि होकर सुलभ ऐसा आश्रय भक्ति मार्ग सिद्ध होता है। देखो, आश्रय भक्ति मार्ग सिद्ध होने के लिए सब बात किया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के आश्रय भक्ति मार्ग इस तरह से आता है, सीधा ऐसा दूसरे प्रकार से नहीं आता है।